नमस्कार भारत, 19 दिसंबर गुरुवार। मैं हूं आदर्श राठौर। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आज देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनों का आह्वान। उत्तर प्रदेश के बाद बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बोले, सही प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या के लिहाज से बढ़ाई जाएं लोकसभा सीटें, कितना व्यावहारिक है ये सुझाव।
उस नए डिलिमिटेशन में अगर इलेक्शन होगा वो तो मेरे ख्याल में 2030 के आसपास जाके होगा और हमारी पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ तब तक 1000 हो जाएगी।
दुनिया जहान में सुनेंगे पड़ोसी देशों से भारत के रिश्ते पर नागरिकता संशोधन कानून का असर क्या होगा।
भारत को थोड़ा सा नम्र हो करके अगर रहते तो संबंध अच्छे रहते।
जानेंगे आज आईपीएल के लिए लगने वाली बोली में किन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बुधवार को देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। आज भी देश के कई शहरों में विभिन्न संगठनों की ओर से प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। इनमें कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में हैं। अब से कुछ घंटों में अमरीका की प्रतिनिधि सभा में इस बात को लेकर मतदान होना है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ जांच शुरू करवाने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया और संसद के काम में दखल डाला। डेमोक्रेट्स का कहना है कि राष्ट्रपति ने अपराधियों वाला काम किया है और ये देश के लिए खतरा है। हालांकि रिपब्लिकन्स ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है, लेकिन हाउस ऑफ इंटेलिजेंस कमेटी के डेमोक्रेटिक चेयरमैन एडम शिफ ने कहा कि ट्रंप साफ तौर पर दोषी हैं।
इन अमेरिका No one is above the law. Donald J. Trump sacrificed.
अमेरिका में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। डोनाल्ड जे ट्रंप ने अगले चुनाव में धोखेबाजी की कोशिश में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है और उन्होंने हमारे चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप करवाने की लगातार कोशिश की। इस वजह से उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए। ये दे एडम शिफ। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग के मुकदमे में गवाही देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले पोम्पियो ने सदन की महाभियोग की कार्यवाही में सहयोग करने से इनकार कर दिया था। हालांकि पोम्पियो व्हाइट हाउस के उन चार अधिकारियों में शामिल नहीं है जिनसे ट्रंप के खिलाफ सीनेट में महाभियोग चलाए जाने की सूरत में डेमोक्रेट्स पूछताछ करना चाहते हैं। स्पेन में हजारों कैटलोनिया के अलगाववादियों ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के बाहर प्रदर्शन किए। इस दौरान अलगाववादियों और केंद्र सरकार के समर्थकों के बीच झड़पें हो गईं। प्रदर्शनकारी उत्तर पूर्वी इलाके की स्वतंत्रता के लिए कानूनी रूप से मान्य जनमत संग्रह की मांग कर रहे थे। पुलिस ने नकाब लगाए हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां आगजनी की थी। इस घटना में कम से कम 12 लोग घायल हुए हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बोलीविया की सरकार ने देश के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस को देशद्रोह और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। मंत्रियों ने एक फोन कॉल की ऑडियो सार्वजनिक की है जिसमें कथित तौर पर मोरालेस यूनियन के एक नेता को कह रहे हैं कि शहर की नाकेबंदी कर दो ताकि सामान अंदर ना आ सके। मोरालेस फिलहाल अर्जेंटीना में हैं। न्यायपालिका पर सरकार के बढ़ते नियंत्रण के खिलाफ पोलैंड में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। पोलैंड में एक नया बिल लाया जा रहा है जिसके कानून बनने के बाद सरकार के पास ये अधिकार होगा कि अगर वो अदालतों में कोई बड़ा बदलाव करना चाहती है और जज उन बदलावों पर सवाल उठाते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें पद से हटाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सोमालिया में फसलों पर पिछले 25 साल में टिड्डों का सबसे भयानक हमला हुआ है। खाद्य और कृषि संस्थान के मुताबिक इन कीटों ने वहां लाखों हेक्टेयर फसलें और जानवरों के चरागाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह से सोमालिया में खाने की सप्लाई पर असर पड़ा है और किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सोमालिया में जारी संघर्ष ने स्थिति को और बदतर कर दिया है क्योंकि टिड्डों के खात्मे के लिए हवाई जहाजों की मदद से कीटनाशक भी नहीं डाले जा पा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। आज मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन होने वाला है, मगर मुंबई में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भी कुछ संगठन प्रदर्शन करने वाले हैं। मुंबई से बीबीसी संवाददाता जानवी मूले हमारे साथ जुड़ी हैं। जानवी, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है इस कानून को लेकर?
पिछले 5 दिनों से जब जामिया मिलिया, दिल्ली के जामिया मिलिया में जो हिंसा हुई, उसके बाद 5 दिनों से लगातार मुंबई में अलग अलग संगठनाएं अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के बाकी शहरों में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें पुणे, नाशिक और कोल्हापुर भी शामिल है। आज शाम 4-5 बजे के आसपास इन सभी शहरों में अलग अलग संगठनाएं इकट्ठा होकर एक साथ प्रदर्शन करने वाली है। मुंबई में जैसे आपने बताया, अगस्त क्रांति मैदान जो एक हिस्टोरिक मैदान है, ऐतिहासिक जगह है मुंबई में, वहां पर ये सभी संगठनाओं को परमिशन मिली है विरोध प्रदर्शन करने की। और साथ ही साथ एक बात यह है कि दक्षिण मुंबई के चर्चगेट इलाके में कुछ संगठनाएं जो इस कानून के समर्थन में है वो भी एक साथ आके प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके के हालात दिल्ली और आसाम में खास करके है, उनको मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहाँ पर किए हैं। अभी तक जो मुंबई में सब प्रदर्शन हुए हैं वो बहुत ही पीसफुल तरीके से हुए हैं, और आज का भी विरोध प्रदर्शन पीसफुल तरीके से ही होगा ऐसा आयोजकों ने कहा है, और बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं, जिनमें फरहान अख्तर ने ट्विटर पे अपनी मंशा जताई है कि वो यहाँ पर विरोध करने के लिए आज शाम जा रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानवी। जानवी मूले बीबीसी संवाददाता बता रही थी कि मुंबई में और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में आज प्रदर्शन होने वाले हैं। इनमें वो प्रदर्शन भी शामिल हैं जो कि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में होंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी समेत कई संगठनों ने भी प्रदर्शन का आज आह्वान किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने कहा है कि निषेधाज्ञा लागू है पूरे प्रदेश में और प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। वहीं बेंगलुरु और कर्नाटक के कई हिस्सों में भी प्रदर्शनों के कारण कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो, इसका हवाला देते हुए प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगाने का ऐलान किया है। आज सुबह 6 बजे से निषेधाज्ञा लागू हो गई है। इस दौरान विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लग गई है। कब तक जारी रहेंगे ये आदेश और प्रशासन ने इसकी वजह क्या बताई है, जानने के लिए मैंने कुछ देर पहले बात की बेंगलुरु में हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी से।
जी, दरअसल बेंगलुरु के अलावा कर्नाटका में मंगलुरु और गुलबर्गा जैसे जिलों में भी निर्देशात्मक आदेश आज सुबह 6 बजे से अगले 3 दिन के लिए जारी कर दिए गए हैं। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने कल रात 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर आदेश का ऐलान किया। उनसे सवाल पूछा गया है कि किस वजह से ये आदेश दिए गए हैं, जबकि पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ विरोध प्रदर्शन हुए हैं वो शांतिपूर्ण रहे हैं। तो पुलिस कमिश्नर का कहना था कि आज करीब 60 संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, और उसके साथ साथ कई दूसरे संगठन भी नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के पक्ष में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। तो उनका मानना था कि शांति बनाए रखने के लिए ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किए गए हैं।
जी, ये कौन से संगठन हैं जो विरोध प्रदर्शन करने वाले थे या करने वाले हैं?
बहुत सारे संगठन हैं, इसमें छात्रों के संगठन हैं, वकीलों के संगठन हैं, दलित संघर्ष समिति के संगठन हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जो संगठन हैं वो भी इसमें शामिल थे। उसके बीच कल दोपहर को एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी ये ऐलान आया कि वो भी पक्ष में, मतलब एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिए थे। तो इस वजह से पुलिस कमिश्नर का मानना था कि मतलब शांति वातावरण खराब हो जाएगा बेंगलुरु का। दरअसल कल रात करीब 12 बजे भी थोड़े छात्र और वकीलों ने मोमबत्ती की रोशनी में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया था। और इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ वकील ने यह भी संदेश देना शुरू कर दिया था कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के बावजूद अगर कोई विरोध प्रदर्शन करा और उन्हें हिरासत में लिया गया तो वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील गौतम भाटिया भी इंस्टाग्राम के जरिए ये भी संदेश दिया कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को कोर्ट में सवाल उठाए जा सकते हैं।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन में होने वाले प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प ना हो, इसके लिए बेंगलुरु और आसपास के कई इलाकों में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। जानकारी दे रहे थे इमरान कुरैशी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हाल में ये सवाल उठाए हैं कि आखिर कोई सांसद कितने लोगों की आबादी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों को देखें तो मतदाताओं की संख्या उसके अनुपात में बहुत ज्यादा है। बढ़ती आबादी को देखते हुए उन्होंने परिसीमन पर लगी रोक को हटाने के बारे में और लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 1000 करने की वकालत की। लेकिन सवाल है कि अगर वाकई ऐसा हुआ, यानी लोकसभा की सीटें 1000 तक बढ़ीं, तो इसका फायदा क्या होगा और क्या इसका कोई नुकसान भी होगा? क्या कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक? सुनिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास की रिपोर्ट।
इसी सप्ताह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश में आखिरी बार परिसीमन को हुए अब दशकों बीत चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि आबादी को देखते हुए फिर से परिसीमन की बात सोची जाए। इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित द्वितीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान में उन्होंने कहा,
देयर इज अ स्ट्रांग केस फॉर रिमूविंग दिस फ्रीज ऑन द नंबर ऑफ सीट्स इन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज।
प्रणब मुखर्जी ने कहा, आदर्श रूप से संसद में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पर लगी रोक को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन जब भी लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 1000 करने और इसी के अनुपात में राज्यसभा की सीटें बढ़ाने की बात होती है तो ऐसा न करने के पक्ष में व्यवस्थागत समस्याओं की दलील दी जाती है। प्रणब मुखर्जी का कहना था कि लोकसभा की क्षमता के बारे में आखिरी बार 1977 में संशोधन किया गया था, जो 1971 में हुई जनगणना पर आधारित था और उस वक्त देश की आबादी केवल 55 करोड़ थी, लेकिन इसे अब 40 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। उस वक्त के मुकाबले अब आबादी दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई है और इस कारण अब परिसीमन पर लगी रोक को हटाने के बारे में सोचा जाना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसी महीने कहा था कि सरकार नई संसद बनाने के काम में लगी है। माना जा रहा है कि नई संसद में अधिक सांसदों के बैठने की जगह होगी। आखिरी बार परिसीमन की प्रक्रिया 2002 में शुरू की गई थी और ये 2008 में खत्म हुआ था और यह आधारित था 2001 में हुई जनगणना पर। वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन मानते हैं,
आजकल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंट्स की नॉर्मल स्ट्रेंथ है 16 लाख टू 18 लाख। अगर ये 2026 में कराएंगे डीलिमिटेशन तो इसका मतलब उसको आप कम से कम 5 से 7 साल दीजिए। उस नए डीलिमिटेशन में अगर इलेक्शन होगा वो तो मेरे ख्याल में 2030 के आसपास जाके होगा और हमारी पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ तब तक 1000 हो जाएगी।
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी मानती हैं कि पहले ही इस मामले में राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन की भावना है। हालांकि उनका कहना है कि संसद में प्रतिनिधियों का बढ़ना और छोटे छोटे संसदीय क्षेत्रों के होने का लाभ भी लोगों को जरूर होगा।
16 से 18 लाख तक आप रिप्रेजेंट करते हो अगर लोगों को, तो कहाँ आपका कांटेक्ट उस मायने में होगा। और जो हमारा पैसा भी ऑफिशियली अलाउड है वो तो जो खर्च होता है वो तो बहुत बहुत 100 गुना ज्यादा होता है।
नीरजा चौधरी कहती हैं कि इससे पहले जब संसद में महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई थी उस वक्त भी सीटों की संख्या बढ़ाने की बात हुई थी, उस समय इसे लेकर पार्टियों ने विरोध किया था। वहीं टीआर रामचंद्रन मानते हैं कि मुश्किलें तो होंगी लेकिन सरकार को सोच विचार कर।
प्रॉब्लम सिर्फ ये होगा कि साउथ के लोग कहेंगे कि साहब वहाँ तो पॉपुलेशन कंट्रोल फॉलो नहीं करते तो उनकी तो सीटें बढ़ रही हैं, यहाँ क्योंकि हम फॉलो करते हैं तो हमारी सीट तो घट रही है, तो हमारी तो दिक्कत है।
नीरजा चौधरी कहती हैं कि जनसंख्या के आंकड़े के साथ साथ और मानदंडों को भी ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जा सकता है।
कुछ पॉपुलेशन भी हो और कुछ दूसरी चीजों को भी मद्देनजर रखा जाए, जैसे कि अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हो या प्रोग्रेस कर रहे हो या आप मेहनत कर रहे हो या ज्यादा आपका जीडीपी आ रहा है अपने बलबूते पे तो उसको भी फैक्टर इन किया जाए। तो कुछ ना कुछ रास्ता अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो जरूर निकलेगा।
जानकार मानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति का इस मुद्दे पर चर्चा छेड़ना बेहद महत्वपूर्ण है। वो मानते हैं कि खुले दिमाग से नए तरीकों के बारे में सोचने का अब वक्त आ गया है ताकि संसद में जाने वाले प्रतिनिधि सही रूप में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। मानसी दास, बीबीसी दिल्ली।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। गुरप्रीत, क्या कहते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार?
जी, एक और मुख्यमंत्री ने किया एनआरसी का विरोध। जी, ये ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जबकि उनकी पार्टी ने कैब के लिए वोट किया था। अब कुल 11 राज्यों पर शासन कर रही 7 पार्टियों ने एनआरसी के लिए इनकार कर दिया है, ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस में
जी।
इसके अलावा भारत ने जेनेवा में नागरिक कानून का किया बचाव, इमरान खान को घेरा, ये खबर भी इंडियन एक्सप्रेस ने लगाई हुई है। भारत सरकार ने बुधवार को जेनेवा में नागरिक संशोधन कानून का बचाव किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने दुनिया भर के शरणार्थियों का स्वागत किया है। सरकार ने यह भी कहा कि वो लोकतांत्रिक तरीके और पूरी प्रक्रिया के साथ समस्या से निपट रही है।
जी, मेरे पास जनसत्ता है जिसमें नागरिकता कानून पर रोक से इनकार, केंद्र को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और साथ ही एक जनरल रावत का बयान है कि एलओसी पर कभी भी बिगड़ सकते हैं हालात, और उन्होंने ये कहा कि भारतीय सेना पूरी ताकत से हर कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जनसत्ता पर ये पहले पन्ने पर जनसत्ता के ये खबर दी गई है
जी। दिल्ली में 2 प्रदर्शनों यानी जामिया नगर और सीलमपुर में प्रदर्शनों को काबू करने के लिए 450 टीयर गैस शेल यानी आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल पुलिस ने किया, ये जानकारी 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को दी है
जी।
इसके अलावा शरद पवार ने राहुल गांधी पर ली चुटकी, ऐसा कहता है टाइम्स ऑफ इंडिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि देश भर में बीजेपी विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं और लोगों को एक विकल्प की जरूरत है जो देश में रहता हो। हालांकि पवार ने यह साफ नहीं किया कि जो देश में रहता हो से उनका क्या मतलब है, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि उन्होंने राहुल गांधी पर ये चुटकी ली है,
जबकि महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां शिवसेना के साथ सरकार बना रही हैं।
जबकि राहुल गांधी के पर इसलिए चुटकी ली है क्योंकि वो दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं और उन्होंने बताया मंगलवार को कि वो वहां के प्रधानमंत्री से मिले
जी।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में 4th दोषी की रिव्यू अपील को खारिज कर दिया है। अब दोषियों के डेथ वारंट पर 7 जनवरी को दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई होगी, जिसका कहना है कि डेथ वारंट तभी जारी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर दें। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में ही एक और खबर है कि महाराष्ट्र में यलगार परिषद मामले में 19 अभियुक्तों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोप हैं। अभियुक्तों में 9 कार्यकर्ता हैं जिनमें कई मानव अधिकार कार्यकर्ता और लेखक भी शामिल हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत। सार्क देशों के समूह में भारत की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन 2014 के बाद से अपने कई निकट पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ते चले गए। पहले पाकिस्तान और नेपाल के साथ संबंध बिगड़े, अब नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ भी संबंध बिगड़ने का खतरा जताया जा रहा है। इस बार दुनिया जहान में पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों की कहानी सुनिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास से।
दुनिया जहान। 2014 में जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के सभी पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। संदेश स्पष्ट था, हम अच्छे पड़ोसी बनना चाहते हैं। उसी साल अगस्त में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो पड़ोसी देशों के साथ, खासकर सार्क देशों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहते हैं।
सार्क देश मिलकर के हम दुनिया में अपनी अहमियत खड़ी कर सकते हैं, हम दुनिया में ताकत बनके उभर सकते हैं।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क 8 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का संगठन है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क इस इरादे के साथ अस्तित्व में आया था कि इसमें शामिल देश आपसी सहयोग से शांति और प्रगति की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत में मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद से कई सार्क देशों के साथ भारत के संबंध बिगड़ते चले गए।
समस्या खड़ी तब हो जाती है जब भारत का सहयोग ये सारे राष्ट्र चाहते हैं, मगर दबदबा को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। भारत को थोड़ा सा नम्र होकर के अगर रहते तो संबंध अच्छे रहते। अभी की जो नई दिल्ली की सत्ता है उसमें बाकी और जो कुछ भी हो, नम्रता के मामले में बहुत ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं।
नेपाल और भारत 1750 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करते हैं। कहा जाता है कि दोनों के बीच न केवल रोजी रोटी का बल्कि रोटी बेटी का संबंध रहा है। लेकिन 2015 में दोनों पड़ोसियों के बीच रिश्तों में तनाव आना शुरू हुआ। नेपाल और अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे राकेश सूद कहते हैं कि नेपाल में जब जब राजनीतिक अस्थिरता रही है, भारत को उसके लिए दोष दिया गया है। 2015 में जब वहां नया संविधान बनने वाला था, उस वक्त तराई के इलाके में रहने वाले मधेसी इसका विरोध कर रहे थे। उनका दावा था कि सरकार में उनकी भागीदारी नहीं है। राकेश सूद बताते हैं,
2015 में जब नेपाल ने नए संविधान पारित करने की तारीख अनाउंस कर दी थी, तो उस समय हमने फॉरेन सेक्रेटरी थे जयशंकर साहब, एक बहुत ही पब्लिक तरह से ये संदेश देने के लिए कि आप ये मत कीजिए। अब किसी भी देश के साथ इस तरह करना मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गलत किस्म की चीज है, वो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए था।
पाकिस्तान और भारत के संबंधों की बात करें तो 2015 दिसंबर को काबुल से दिल्ली लौटते हुए अचानक प्रधानमंत्री मोदी का काफिला लाहौर की तरफ मुड़ गया। खुद पहल करते हुए मोदी पाक प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे तो माना गया कि उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन भविष्य में तो कुछ और ही था। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन में सचिव रहे राकेश सूद बताते हैं कि वक्त के साथ दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए।
पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम उसको सोचें कि हम एक जन्मदिन पे जाकर मतलब सरप्राइज विजिट देकर मुद्दों को सुलझा लेंगे, तो वो नहीं होता है।
रही अफगानिस्तान की बात, तो भारत के साथ उसके संबंध पुराने और कूटनीतिक तौर पर अहम जरूर रहे हैं, लेकिन दशकों से हिंसा से जूझ रहे अफगानिस्तान से जब अमेरिका ने बाहर निकलने का ऐलान किया तो भारत लगभग शांत ही रहा। राकेश सूद बताते हैं,
हम लोगों को लगता है क्योंकि हम लोग इतना निर्भर हो गए थे कि वहाँ अमेरिकन हैं, शायद हमको उससे ऊपर थोड़ा पहले कुछ सोचना चाहिए था कि वो जाने वाले हैं और उसकी प्लानिंग हमको उसी तरह करनी चाहिए थी।
১৯৭১ में पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र बना। चूंकि इसके गठन के दौरान भारत की भूमिका अहम रही थी, इस कारण भारत के साथ इसके रिश्ते भी शुरुआत से मधुर रहे। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर रहे देव मुखर्जी समझाते हैं,
हमारे ओर से जो सबसे बड़ी बात थी बांग्लादेश में जो उग्रवादियों को जो समर्थन मिल रहा था, वहाँ इस सरकार ने बिल्कुल 100% वो बंद कर चुके हैं। लेकिन हमारी ओर से जो करना था वो हम नहीं कर पाए। 2011 में पश्चिम बंगाल के ऑपोजिशन के वजह हमने तीस्ता एग्रीमेंट पे हमने दस्तखत नहीं कर पाए। तो दिस इज अ वेरी नेगेटिव डेवलपमेंट।
हाल में भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू किया है। इस कानून के अनुसार बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। इस कानून को लेकर भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल में बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन का ये कहना था कि भारत सरकार ने भरोसा दिया है कि किसी को जबरन वहां नहीं भेजा जाएगा, लेकिन देव मुखर्जी कहते हैं कि आश्वासन भर काफी नहीं है।
ये करना काफी नहीं है क्योंकि द होल थिंग इज प्रेडिकेटेड ऑन द इल ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। उनके जो पब्लिक परसेप्शन है अबाउट इंडिया, दैट ऑब्वियसली बिकम्स नेगेटिव।
वो मानते हैं कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो हो रहा है उसका असर आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है। बीते कुछ सालों में भारत ने यूरोप के देशों, अमेरिका, रूस और मध्य पूर्व के कई देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे इसी बात का तो उदाहरण है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत का ध्यान अपने निकट पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर करने की तरफ कम है। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है और भारत के लिए अपने पड़ोसियों के साथ संपर्क साधना आने वाले वक्त में बेहद अहम कदम साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये देखना अभी बाकी है। मानसी दास, BBC दिल्ली।
अब बात क्रिकेट की। भारत ने कल खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 107 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 387 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 44वें ओवर में 280 रन ही बना पाई। रोहित शर्मा और KL राहुल के शतक जो थे वो भारत के लिए मददगार रहे। वहीं गेंदबाज कुलदीप यादव ने हैट्रिक बनाई। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है और अब अगला मैच कटक में खेला जाएगा जो वो काफ़ी निर्णायक रहेगा। अगले साल यानी कि 2020 में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए आज खिलाड़ियों की बोली लगनी है। इसमें कौन से खिलाड़ी अहम रहेंगे और किस टीम पर नजरें रहेंगी, सुनिए आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
दुनिया की सबसे कामयाब और सबसे महंगी क्रिकेट लीग IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के साल 2020 में 13वें संस्करण के लिए देसी विदेशी खिलाड़ियों की नीलामी आज दोपहर कोलकाता में होगी। आज 73 खिलाड़ियों को खरीदा जाएगा जिनमें 29 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। IPL के नीलामी में खिलाड़ियों का बेस प्राइस लाखों से लेकर करोड़ों में है। सबसे अधिक 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस लिन, जोश हेजलवुड, मिचेल मार्श और पैट कमिंस, दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन और श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज हैं। लीग में जगह बनाने के लिए 997 खिलाड़ियों के नाम सामने आए जिसके बाद 332 नामों पर नीलामी की मोहर लगी। सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ियों में केवल एक नाम रोबिन उथप्पा का है जिनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है। पीयूष चावला, यूसुफ पठान और जयदेव उनादकट का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए है। अब आज किन पर पैसों की बरसात हो सकती है इसे लेकर क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
मेरी सोच तो अभी भी यही है कि अगर मिचेल स्टार्क अपने आप को अवेलेबल करते हैं तो काफी अच्छे डिमांड में रहेंगे क्योंकि वो बैटिंग भी लेट ऑर्डर में बल्ला घुमा के 15-20-25 रन बना सकते हैं 6-7-8 गेंदों में। पैट कमिंस क्योंकि वो बहुत उनके पास हुनर है और विश्व के मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज है फिलहाल। इयान मॉर्गन एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर काफी अच्छी बोली लग सकती है, हालांकि उनका ब्रैकेट जो है 1.5 करोड़ का है क्योंकि उनके पास 2 चीजें, एक तो बैटिंग एबिलिटी है, दूसरा लीडरशिप क्वालिटी है और जो लीडरशिप क्वालिटी पंजाब जैसी टीम के लिए जरूरत है तो शायद पंजाब ही उनके लिए अग्रेसिवली बिड करेंगे। जहां तक इंडियन प्लेयर्स का सवाल है, देखिए रॉबिन उथप्पा वैल्यू फॉर मनी है लेकिन कुछ हद तक है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पैसे की बोली ऐसे प्लेयर पे नहीं लगेगी।
और बोली लगाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा किंग्स 11 पंजाब के पास 42 करोड़ 70 लाख रुपए है। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी 35 करोड़ 65 लाख रुपए है। राजस्थान रॉयल्स के पास 28 करोड़ 90 लाख और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 27 करोड़ 90 लाख रुपए है। लेकिन इनकी बंद मुट्ठी बहुत सोच समझकर खुलेगी, एक और क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली समझाते हैं।
मोटी बोली लगा सकते हैं, फिर वही बात कि आपको देखना पड़ेगा कि ये खिलाड़ी मेरी 11 में या 12 में या 15 में कितना वैल्यू ऐड करेगा। एक्सपीरियंस होगा तो और भी अच्छा होगा और पर्स भी देख के चलना है आपको। कभी हो सकता है किसी एक खिलाड़ी के लिए आपको बहुत पैसे निकालने पड़ गए तो आपका पर्स छोटा हो गया और टीमें जो ओनर्स हैं उनके कोचेस उनको क्या हिदायत देते हैं उस हिसाब से ही सब डिसाइड होगा। अभी तो हमने नाम देख लिए, हो सकता है कोई एक और सरप्राइज एलिमेंट हमको उस दिन मिल जाए जो हमने नाम सोचा ही नहीं। डेल स्टेन ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ का रखा है तो उनको लगता है कि शायद परफॉर्म करेंगे। स्टेन इंजरी प्रोन है तो जो भी फ्रेंचाइजी होगा सोच समझ के पैसा लगाएगा और कोशिश उसकी यही रहेगी कि फिट खिलाड़ी लूं, फॉर्म वाला खिलाड़ी लूं और ऐसे खिलाड़ी लूं जो अपने दमखम पे अकेला ही जरूरत पड़ेगी तो मैच निकाल दे।
अब देखना है कि आज किस खिलाड़ी पर पैसे की कितनी बरसात होती है जिसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।